आज के 17 मार्च के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है और आपका बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। कीर्तन की पद्धति जो है वो हमारे लिए कलयुग में सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि कीर्तन की पद्धति बहुत आसान है, वो कोई भी अपना सकता है। इसलिए कीर्तन की पद्धति जो अपनाएगा वो सबका उद्धार हो जाएगा, ना उसमें बालक का भेद होगा, ना बड़े आदमी का होगा, ना पढ़े लिखे वाले का, ना अनपढ़ का, धनी आदमी का या गरीब आदमी का। कोई भी व्यक्ति जब कीर्तन पद्धति को स्वीकार करता है, भगवान के नाम को पुकारता है, उसका बहुत जल्द उद्धार हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कलयुग की कितनी भयंकर अवस्था होती। अगर यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो, अगर गौरांग महाप्रभु नहीं आते और उन्होंने इस कीर्तन पद्धति को नहीं सिखाया होता तो हमारी क्या अवस्था हो गई होती, ऐसा एक कवि पूछते हैं अपने कविता में। यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो काय झालं असतं, जर गौरांग महाप्रभु आले नसते तर। तो ये कलयुग की अवस्था जो है उसका शास्त्र में वर्णन दिया गया है कि कलयुग में क्या क्या होता है। कलयुग बहुत अजीब युग है। स्नानम एवं प्रसाधनम ऐसे कहा गया है कि कलयुग में स्नान करना ही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को पता नहीं, आप लोग बड़े भाग्यवान लोग हो, भारतवासी हो, भारतवासी लोग सब लोग रोज स्नान करते हैं, कभी को तीन बार भी करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा लिया है वो गायत्री जप करते हैं तो उनको तीन बार भी स्नान करना पड़ता है। लेकिन विदेश जाओगे ना, विदेश में तो हफ्ते में एक बार स्नान करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मैं अमेरिका गया, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब मैं अमेरिका गया तो मुझे ये भी मालूम पड़ा कि घर में स्नान की व्यवस्था नहीं है, इसलिए दोस्त के घर में हफ्ते में एक बार स्नान करने को जाते हैं। इंग्लैंड में अमेरिका में इतना बर्फ पड़ता है ना, रोज स्नान कौन करेगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रसाधनम का मतलब क्या है, मतलब मेकअप। स्नान करना यही मेकअप है ऐसा बोलते हैं। और दाक्ष्यम एवं कुटुंब भरणम, किस व्यक्ति को बड़ा माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा या एक्सपर्ट माना जाएगा जो अपने परिवार को पाल सकेगा। दो वक्त की रोटी पहली बार परिवार को देगा अच्छी तरह से, उसको बहुत बड़ा महान माना गया। क्योंकि तो आमतौर पर आदमी जो है वो इतने कंगाल रहेंगे कि वो अपने परिवार को नहीं पा पाएंगे, फिर वो घर के सब लोग नौकरी करते हैं, बच्चे भी करते हैं और बीवी भी करती है, सब लोग करते हैं। उस आदमी को महान माना जाएगा जो व्यक्ति अकेला अपने सारे परिवार को संभाल सकता है, उतना धन कमाएगा कि सब लोग उसमें रह सकते हैं आराम से। और भी बहुत चीजें बताई गई है कि कलयुग में क्या क्या होगा। बोले लंबे बाल रखना पुरुष के लिए ये एक सौंदर्य का प्रमाण होगा। तो हम लोग कलयुग में क्या देखते हैं, औरतों के बाल छोटे 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 होते जा रहे हैं और आदमियों के बाल लंबे लंबे होते जा रहे हैं, है ना। पहले केवल औरत लोग बाल को पोनी बांधते थे, अभी तो ढेर सारे आदमी लोग भी बांधते हैं, करते ना, लंबे बाल रखते हैं और उसको रबर लगाते हैं। अगर पीछे से आप चलेंगे तो पता नहीं चलेगा आदमी है कि औरत। और आपको आश्चर्य होगा, ये सब बातें भागवत में दी गई है कि जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा आदमी लोग बाल लंबे बने रखेंगे, औरत लोग उसको कट करते जाएंगे, उनको बहुत तकलीफ होगी लंबे बाल संभालने के लिए, इसलिए वो कट कट करते जाएंगे। ये सब भागवत में लिखा है। और आयु बहुत कम होगी सबकी। अभी देखो 100 साल की उम्र हो गई तो उसका पेपर में फोटो आता है कि 100 साल पूरे हो गए। पुराने जमाने में हमारे सब जो दादा लोग थे, नाना लोग थे, वो सब लोग 110, 120, 125 है ना, कॉमन था एकदम, 100 के ऊपर जाना बहुत कॉमन था। अभी 90 हो गए तो बाप रे बाप, 90 हो गए तो सुनाई भी नहीं पड़ेगा, दिखेगा भी नहीं कुछ, और चलने को भी नहीं होगा, खाने को भी नहीं होगा, कुछ नहीं करने को होगा, हाथ भी ऊपर उठाने को नहीं होगा। और हमारे बचपन में हम देखते थे कि 105 वाला आदमी जो है वो रोज चलता है फर्स्ट क्लास, एकदम जाके खेती करके आता है, किधर कुछ भी करके आता है, खाना बनाते हैं अपने हाथ से। हमारी दादी जो थी कितनी बुढ़ी थी, बिल्कुल खाना बना देती। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साउथ इंडियन लोग, बहुत जानता हूँ मैं। क्या कहने का मतलब है कि आयु बहुत कम कम होती जा रही है। 25 साल के लोगों को बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है, जाके देखो आपने सेकंड फ्लोर पे। 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में एकदम बड़ा हार्ट अटैक, और कॉलेज के लड़की के सफेद बाल, कॉलेज के लड़कों के सफेद बाल, ये देख रहे ना आप लोग सब। पहले बोलते थे अरे सफेद बाल कलर की शादी कर रहे हो, बुढ़े से शादी कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं। आजकल तो दूल्हा दुल्हन दोनों के बाल सफेद होते हैं, क्या करें, एकदम यंग अवस्था में। मतलब आयु कम होते रह रही, बुढ़ापा जल्दी जल्दी आ रहा है। 10 और 9 साल की लड़कियों को भी अभी जल्दी जल्दी मासिक धर्म आने लगा है, इसका मतलब आयु कम होते जा रही है। तो जो जो होना है जल्दी जल्दी हो रहा है, बुढ़ापा भी जल्दी आ रहा है, जवानी भी जल्दी आ रही है, बीमारियां भी जल्दी आ रही है, अब मृत्यु भी जल्दी आ रही है। मंद सुमंद मतयो, मतलब लोग बहुत आलसी हो गए कलयुग में। अब देखो आप लोग भी बैठ जाते हो, बैठने के बाद क्या होता है, तुरंत नींद आने लगती है। ट्रेन में बैठा हो, बस में बैठा हो, प्रवचन में बैठा हो, लेक्चर में बैठा हो, हाँ कोई NABH का ट्रेनिंग चल रहा हो, किधर भी कुछ भी हो, एक बार अभी बैठ गया सो गया, उसको बोलेगा आप रोज सुबह 5 बजे उठ के आपको मंदिर जाना है मंगल आरती के लिए, तो बोले 5 बजे बहुत जल्दी है प्रभु जी, थोड़ा और कुछ टाइम बताओ ना, तो बोले काम करो आप दर्शन आरती में आओ 7:30 को, हाँ ठीक है, तो भी हफ्ते में एक ही बार आएंगे, और रात को जगेंगे, है ना। किसी को बोला रात को पार्टी है तो वो बात नहीं, कितना बजे, 10 बजे आ जाएंगे, कितने बजे तक, 4 बजे तक, हाँ ठीक को बात, रात को जगेंगे, दिन में बोलो उठो ऐसे नहीं उठेंगे। आप सोचो मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कभी भी आप शादी बोलो शाम को शादी है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, और रात को 2 बजे फेरे हैं कोई बात नहीं आ जाएंगे। तो आदमी का कैसा स्वभाव कैसा हो गया है, सोने के टाइम पे उसको जगना होता है, और जब जगना होता है सोने का दिल करता है उसको, और कुछ भी करने को बोलो तो आलस से पहले है। काम करने के लिए देखो कितना धक्का मारना पड़ता है, ये करो वो करो, सुपरवाइजर उसके ऊपर सुपरवाइजर उसके ऊपर और सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की जरूरत क्या होती है बताओ, सुपरवाइजर इसलिए होता है कि वो काम नहीं करते इसलिए उसको एक आदमी रखना पड़ता है काम कराने के लिए, उसका नाम क्या है, सुपरवाइजर, जो देखता है कि वो करता है कि नहीं करता है, फिर वो सुपरवाइजर अपना काम करता है कि नहीं इसलिए और एक सुपरवाइजर उसको रखते हैं। क्योंकि किसी को काम नहीं करना है कलयुग में, सब लोगों को लगता है कि बिना काम के मिलेगा तो अच्छा है, कम से कम काम मिले तो अच्छा है, लोगों के काम करने की इच्छा और क्षमता जो है वो कम कम होते जा रही है। और उनको आप किसी अच्छी चीज के बारे में बताओ तो उनको इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, लेकिन कोई फिल्म के बारे में बताओ, कोई शराब के बारे में बोलो, कोई शेयर मार्केट के बारे में बोलो, तुरंत उठ जाएगा वो, भागेगा उसके पीछे। लेकिन बोलेगा कि शाम को सत्संग है, कौन जाएगा शाम को सत्संग, Nobody will go। ये स्थिति है। और बोला शाम को पार्टी है, नॉन वेज है उसमें, दारू है, सब लोग फुल। अरे हमारे मेडिकल में भी बाद में क्या होता है, मेडिकल में भी जब भी मेडिकल का होता है ना कॉन्फ्रेंस, जब मेडिकल के विषय चर्चा करते हैं हम लोग, तो मेडिकल का कॉन्फ्रेंस जब शुरू होता है तो 2-4 लोग रहते हैं, और लास्ट में 9:30 को डिनर होता है, डिनर में फुल होता है, क्योंकि डिनर की इच्छा से नहीं होता है, क्योंकि उसमें दारू और मटन रहता है, इसलिए 9:30 को फुल रहता है पूरा, और 1 घंटे के बाद सब डॉक्टर लोग दारू पी के एकदम टाइट हो जाते हैं। लेकिन जो सुनना है मेडिकल में उसमें कोई आता नहीं है, ये आज की स्थिति है। मेडिकल एसोसिएशन मतलब क्या, डॉक्टरों का एसोसिएशन, जो सब लोग मिलते हैं बात करते हैं, केवल शराब पीने के लिए और मांसाहार करने के लिए और डिस्को नाचने के लिए डॉक्टर लोग अपना बनाते हैं एसोसिएशन, और वो केवल उसी के लिए मिलते हैं उसके अंदर। नाम खाली कोई आता है बोलने के लिए, वो भी मालूम है कोई आता नहीं उसके लिए। तो पाप जो है वो लोग करने के लिए ज्यादा प्रवृत्त हो गए हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पाप करने को सीखते हैं। अच्छा करने के लिए सिखाएंगे तो बहुत टाइम लगता है उनको, वो कोई आता भी नहीं सीखने के लिए। तो प्रायेण अल्पायुषा कलावस्विन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, बहुत क्या कहते हैं दुर्भाग्य लोग हैं सब लोग, उनको अच्छी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और युपद्रुतः मतलब क्या, हमेशा त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब देखो ट्रेन में आप जाओ और ट्रेन में किसी को बोलो थोड़ा जगह तो बैठने के लिए, कैसा मुंह बनाएगा वो, आइए आइए भाई बैठे बैठे, ये जगह बनाओ जरा, बेचारा खड़ा है उसको बैठो, वो जरा सा भी नहीं लेगा। फिर दोबारा उसको बोला जरा बैठो आगे बढ़ो, चार का सीट है बैठो जगह दो, फिर चिल्लाएगा फर्स्ट क्लास का टिकट निकालो इधर क्यों आए हो, फिर सेकंड क्लास का डब्बा है। परेशान रहते हमेशा, कोई किसको हेल्प करने का मूड रहता नहीं है, चाहे वो बच्ची को लेकर खड़े होंगे तो भी फिर वो हिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, कोई जोर से बोलेगा तो फिर तुरंत हिल जाएगा। और झगड़ा करने के लिए कोई कारण लगता नहीं किसी को, ट्रेन में किसी के पाँव पाँव दिया गलती से भी चालू झगड़ा, जरा जरा सी बात पर तुरंत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। गाँव में तो आजकल ऐसा हो गया ना, थोड़ा दो चार बातें हो गई ना तुरंत गन निकाल के शूट कर देते हैं, कट्टे से लाइसेंस बिना होता ना वो, बहुत जगह मिलता है गांव में। जरा जरा सी बात पर हमारे यूपी के अंदर आ जाते ना हम लोग उधर बरसाने वगैरह में, जरा जरा सी बात पर गोली मारते थे तुरंत, और गोली चलना एकदम आराम मतलब क्या बोलते हैं आम बात हो गई है। हमारे बॉम्बे में तो कम से कम ऐसा नहीं है, लेकिन गाँव में गोली चलना बहुत ही आम बात है, कभी भी गोली चल सकती है एनी टाइम, और बिना लाइसेंस की चाहिए उतनी बंदूकें मिलती है। और झगड़े इतने लोगों के हैं, हर जाति हर धर्म के बीच में झगड़े, कोई बोलता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई बोलता है मैं जाट हूँ, कोई बोलता है मैं फलाना हूँ, कोई बोलता है ये फलाना है, हर एक का अपना अपना ग्रुप है, और वो झगड़े विवाद चलते रहते हैं उनके। जमीन के ऊपर कितने विवाद हैं, शादी के में कितने विवाद हैं, फैमिली कोर्ट बनाया अलग पिता पति पत्नी के झगड़ों को संभालने के लिए, फैमिली कोर्ट अलग स्पेशलाइजेशन है, फैमिली कोर्ट में लॉयर लोग अपना अलग स्पेशलाइजेशन करते हैं, अलग विषय हो गया क्योंकि इतने झगड़े हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं और हम लोग भी पढ़ते हैं मैगजीन में वगैरह, 100 साल पहले हमारे घर में बोलते थे मतलब हमारे मतलब सबके घर पे कि बेटा जाति के अंदर शादी कर, जाति के अंदर। उसके बाद 20 साल गए तो फिर बोलने लगे जाति नहीं चलेगा, हम सब अपनी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ शादी कर, मतलब कमीत कमी मराठी बोलना ना पाहिजे, मराठी पाहिजे बस, बाकी मग जात सांबार कुंभार काय पण चालेल। नंतर बोलेंगे कि कम से कम बॉम्बे वाला हो या महाराष्ट्र वाला हो, कम से कम ये एरिया का हो। फिर बाद में बोले कि चलो शादी किधर भी कर लेकिन अपने धर्म से कम हिंदू होना चाहिए, या तो मुसलमान बोलेंगे मुसलमान से होना चाहिए, कोई जो और क्रिश्चियन बोलेगा क्रिश्चियन से होना चाहिए, कम से कम इतना तो रखो भाई, भाषा कुछ भी हो पढ़ा लिखा नहीं हो। पीछे बोलते थे कि कम से कम अपनी पढ़ाई के बराबर से करो कम से कम। फिर बाद में बोलते हैं कि विदेशी भी चलेगा लेकिन अपने हैसियत का होना चाहिए। आज मालूम है क्या बताते हैं, आप सबको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, आज लड़कों को बोलते हैं लड़की से शादी कर, लड़के से मत कर, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मुंबई में भी अभी आ गया है, फॉरेन में भी चल रहा है, समलिंगी संबंध होता है लोगों का, पुरुष पुरुष के साथ विवाह भी करता है कोर्ट में और चर्च में और जगह पर उनका शादी भी होता है। मैं जब अमेरिका पढ़ने गया था ना बीच में 2007 साल में, तो वो हॉस्पिटल का जो प्रमुख था, जैसे हमारे हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर संके हैं वैसे हॉस्पिटल का एक प्रमुख था, वो समलिंगी था, उसका शादी हुआ था एक आदमी के साथ, तो और वो आदमी का डेथ हो गया इसलिए तो वो छुट्टी पर था, क्योंकि उसका जो विवाह हुआ था वो आदमी उसका मृत्यु हो गया। कितनी अजीब बात है कि आपके हॉस्पिटल का टॉप मोस्ट आदमी जो है उसने आदमी के साथ विवाह किया है। ऐसे औरतें भी औरतों के साथ विवाह करते हैं, वो साथ में रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का डिविजन होता है, उनकी भी कोर्ट होता है, उनका डिवोर्स भी होता है, कितना सारा चीज आ गया है हमको पता नहीं है मार्केट में। ये प्रगति का लक्षण नहीं है, ये अधोगति का लक्षण है, ये कलयुग आगे बढ़ने का लक्षण है। और यहां तक कि लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि कुछ लोग एक शादी करते हैं औरत से, एक शादी करते हैं आदमी से, एक ही व्यक्ति एक साथ, और संबंध उनके होते रहते हैं। इतना गंदा गंदा होता है ये, तो वही इतने गंदगी का बात करने का समय नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कलयुग इतना गिर चुका है कि लोगों के अंदर कुछ वैल्यू नहीं बची है। जब माता पिता अभी आजकल बोलते हैं अरे शादी लव मैरिज कर रहा है चलेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन लड़की साथ लड़की के साथ ही कर लड़की के साथ मत कर। और ड्रग्स, दारू पीना, ड्रग लेना, वेश्या के पास जाना, सब चलता है लोगों को आजकल। अभी अभी हमारे कॉलोनी में एक शादी हो गई, लड़की है 25 साल की और आदमी जो है वो 49 ईयर्स का है, उसको भी उसके उम्र की एक लड़की है, और वो भी ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन 2 साल से ये लड़की और वो आदमी ऑलरेडी घर पे रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, खाली 2 साल के बाद अभी शादी करने जा रहे हैं बस। उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, मतलब आप शादी के पहले एक ट्रायल ले सकते हैं 2 साल 3 साल, अगर जमा सब कुछ जम गया, स्वभाव जम गया, सब कुछ अच्छा लगा, आपसे उनको खुशी मिली, उनको आप उनसे तरफ से आपको खुशी मिली, चल सकता है ऐसा लगा। क्योंकि बच्चे भी होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे भी हो जाते हैं, 2-2 बच्चे होने के बाद भी शादी करते हैं। हरे कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो। तो जो जो पहले एकदम हमको आश्चर्य लगता था कि अरे ऐसा करते हैं, आज नॉर्मल हो गया है। जैसे मेरा जन्म हुआ था ना जिस साल पे, उस साल तक भारत भर में गर्भपात करना बड़ा अपराध माना जाता था। गर्भपात करने वाले को, स्त्री या पुरुष को, गांव के बाहर निकाल देते थे। आप उस गांव में रह सकते नहीं अगर आपने गर्भपात किया, मतलब आप गांव के बिरादरी के जाति के सब बाहर फेंक देते थे आपको, इतना बड़ा अपराध मानते थे उसको। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वो एक कायदा बना दिया कि हाँ ये अबॉर्शन कर सकते हैं कायदे से। तब से भारत भर अभी सब लोग नहीं चाहिए बच्चा तो तुरंत अबॉर्शन कर देते हैं, कोई पाप वाप नहीं मानते उसको। लेकिन पाप तो अभी भी है, वो ऐसा नहीं कि भगवान का रूल बदली हो गया। आपके गवर्नमेंट का रूल बदली हो सकता है लेकिन भगवान का रूल बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। लेकिन आजकल हर घर में एक औरत 2-3 बच्चा होने के बाद में, मतलब एक बच्चा होने के बाद में बाकी अबॉर्शन करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जो अपराध था पहले, जो गुनाह था पहले, वो अभी नॉर्मल होते हुए जा रहा है, लोगों को लगता नहीं कुछ गलत है इसके अंदर। अरे ब्राह्मण लोग ना शराब को छूते थे, ना बीड़ी पीते थे, ना तंबाकू खाते थे, मांस खाना तो दूर रह गया। हम खुद ब्राह्मण हैं, हमारे ससुर के लोग भी ब्राह्मण हैं सब लोग। अभी सबके घर में फ्रिज में अंडे होते हैं, सब लोग नॉनवेज खाते हैं, सब लोग तंबाकू खाते हैं, सब लोग बीड़ी पीते हैं, सब लोग शराब पीते हैं, नॉर्मल हो गया है। जब मेरा विवाह हो रहा था तो ऐसा चल रहा था बातें कि अरे डॉक्टर है ना, तो मतलब मेरे बारे में नहीं और किसके बारे में, नहीं कभी कभी वो एक पैक भी ले लेता है, कभी कभी सिगरेट भी पी लेता है। लोग कोई बात नहीं, सब लोग पढ़े लिखे लोग लेते हैं आजकल, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, वो सब लोग अभी लेते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। आपको अभी आजकल बिना पीने वाला आदमी कोई मिलेगा ही नहीं, ऐसा बोलते थे। ये कभी की बात है, आज के 28 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज तो क्या हर एक आदमी ये सब कुछ टेस्ट कर चुका होता है। आजकल के जमाने में लड़का और लड़के जब शादी होती है तो शादी के पहले किसी का संबंध हुआ नहीं है, ऐसा बहुत रेयरली मिलता है कि भाई किसी का लव अफेयर, किसी का लफड़ा बिना किए अभी फ्रेश शादी हो रही है, ऐसा बहुत दुर्लभ हो गया आजकल। क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में सबके सब संबंध होते रहते लोगों के। जब चैतन्य महाप्रभु आने का समय था ना, 535 साल पहले की बात है, कितने साल पहले की बात है, 529 साल पहले की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, तभी ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति थी कि ब्राह्मण लोग भगवान का नाम लेना ही भूल गए थे। केवल साल में जब ही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता था तो नदी में उतरते थे, तभी भगवान विष्णु विष्णु का नाम लेते थे। लेकिन साल भर में कभी भी पूजा भी करते थे घर में तो भगवान का नाम लेते नहीं थे, और गुड्डा गुड्डी की शादी करते थे, बहुत सारा पैसा खर्च करके तुम्हारी गुड्डी मेरा गुड्डा ऐसा करके बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे। और नवद्वीप में पहले उसके पहले नवद्वीप धाम जो था, जहाँ पर महाप्रभु का जन्म हुआ है, वो विद्वानों का पीठ था, वहाँ पर विद्वान लोग रहते थे, अनंत संख्या में विद्वान हुआ करते थे, वो वहां पर रहते थे। तो मैं आज जो वर्णन कर रहा हूं वो उससे भी भयंकर है। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मनुष्य का मांस भी खाते हैं आज लोग। एबॉर्शन जो करते हैं ना बेबीज, वो अभी इतने एबॉर्शन हो रहे हैं, इतने एबॉर्शन हो रहे हैं, पहले तो पाप था, अभी तो कायदे से हो गया है। तो जगह जगह नर्सिंग होम खुले हुए हैं उसके, और जगह जगह कॉलेज की लड़कियां बिना शादी की, शादी की हुए और माता पिता सब लोग वहां पहुंच जाते हैं एबॉर्शन करने के लिए। तो इतना सारा मांस निकलता है ना वो एबॉर्शन वाला। तो किसी किसी ने उसको खरीदना शुरू किया, और किसी किसी ने अपने होटल में उसमें नॉनवेज में मिक्स करना शुरू किया, उसमें से नॉनवेज का स्वाद बढ़ गया, तो फिर उसके ग्राहक बढ़ गए, तो फिर वो रेगुलर बिजनेस हो गया। नर्सिंग होम एबॉर्शन के और होटल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया रेगुलर, उसमें जो निकलता है वो यहाँ बेचते हैं और वो यूज़ करते हैं। अभी तक कायदे से नहीं हुआ है लेकिन छुप छुप के सब जगह चल रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में, सब जगह पर ये बड़े बड़े फाइव स्टार होटल के अंदर ये मिलता है। दुकान दुकान पर ड्रग्स मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? किधर भी जाओ, बोरीली में जाओ, कांदिवली में जाओ, पानवाले के पास आपको ड्रग मिलेंगे, ब्राउन शुगर मिलेगा, हीरोइन मिलेगा, गर्द मिलेगा। बच्चे लोगों को रुपया हाथ में देना बहुत डेंजरस हो गया है। चॉकलेट में से बच्चों लोगों को ड्रग्स खिलाते हैं, फिर बच्चों को उसकी आदत लग जाती है, फिर वो उसके आदि बनकर फिर भी चोरी करके भी उसको खरीदते हैं। इस तरह से लोगों को वो ड्रग्स बेचते हैं। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से वो सब ड्रग आते हैं, वो इंडिया में जवान लोगों को खराब करने के लिए उसको बेचते हैं। इतना समय बिगड़ता जा रहा है, हमको पता नहीं, हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, इसको गारंटी नहीं है। स्कूल में, पहले तो कॉलेज में लव अफेयर हुआ करते, अभी स्कूल में होते हैं। स्कूल के अंदर पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं के लड़के लोगों के अंदर लव अफेयर होता है, और चेंज भी करते हैं। एक पांचवी में अलग था लव फ्रेंड, अभी दसवीं में अलग है, फिर कॉलेज में तो क्या पूछना है उसका। इतना हमारा कल्चर, इतना हमारा जीवन नीचे उतरता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कीर्तन पद्धति बहुत श्रेष्ठ पद्धति है। क्यों? क्योंकि इतने गिरे हुए लोग भी अगर भगवान के नाम को लेंगे तो उनका उद्धार हो सकता है। भगवान क्या बोलते हैं? अरे सत्ययुग के लोगों के लिए उन्होंने बताया था कि ध्यान करना चाहिए। 60,000 साल सब कुछ छोड़ छाड़ के, परिवार छोड़ के, राज्य दरबार छोड़ के, धन छोड़ के जंगल में जाकर रहना है और ध्यान करना है भगवान के ऊपर। इतने ऊंचे लोग थे उस समय, इधर 2 मिनट ध्यान लगाना मुश्किल है। 60,000 साल ध्यान कौन करेगा? टाइम किसको है इतना? इतना जीवन भी नहीं है। उसके बाद में जब और जीवन आगे गया त्रेता युग का, तो भगवान ने कहा कि यज्ञ करना चाहिए। तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ वगैरह बड़े बड़े यज्ञ होते थे, कई महीनों तक चलते थे वो। कितने कितने पुजारी, ऋषि मुनि आकर कैसे यज्ञ करते थे? एक मंत्र बोलते थे और अग्नि उत्पन्न होता था। आजकल क्या करते हैं? माचिस लगाना पड़ता है और थोड़ा सा उसको भिगा कर डालना पड़ता है। हम लोग करते नहीं यज्ञ, हमारे मंत्र में इतनी ताकत नहीं कि हम मंत्र बोलेंगे और अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन त्रेता युग में हरेक पुजारी, हरेक पुरोहित केवल मंत्राग्नि, मंत्र उच्चारण करके अग्नि उत्पन्न करता था। और बड़े बड़े 3-3 महीने के यज्ञ हुआ करते थे, टनों टनों घी का अंदर उसमें आहुति पड़ती थी। फिर आगे युग आया द्वापर युग, तो लोगों के यज्ञ करने की योग्यता भी समाप्त हो गई, बोले नहीं कर सकते। तो मंदिरों की पूजा शुरू हुआ, मंदिर के भगवान की स्थापना करके पूजा करना शुरू हुआ। और कलयुग में तो कोई भी योग्यता नहीं है, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं। अभी आपको बोला 2 मिनट बैठ जाओ शांति से एकदम ऐसा, केवल भगवान का विचार करो, तो 2 मिनट के अंदर 200 बार आप दूसरा सोचेंगे, और एक बार भगवान का विचार करेंगे और 200 बार और कुछ सोचेंगे। मन इतना घूमेगा आपका 2 मिनट के अंदर, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या किया 2 मिनट के अंदर। आंख बंद करके बैठ गए लेकिन ध्यान तो होना मुमकिन नहीं है, मन तो इतना भटकता है। आपको मालूम है जब करते समय सबसे बड़ी समस्या क्या है बताओ? यस, जब करने वाले लोग कितने लोग हैं इसमें बताओ, हाथ पर। जब करते समय सबसे बड़ी समस्या क्या है बताओ? नहीं, जब करते समय समस्या क्या है, तकलीफ क्या होती है आपको, परेशानी क्या होती है जब करने के बीच में? जब करना शुरू करते ही नींद आती है, निद्राधीन होता है आदमी, निद्रासन में व्यस्त हो जाता है। इसे जब करते समय बाजू के भक्तों को बोलना पड़ता है, प्रभु जी मैं सो गया तुम्हारे को जगाना जरा, मुझे उठाना जरा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नींद आती है जब करते समय। माला हाथ में लेते ही पूरा झपकी चालू, क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास ना ध्यान करने की शक्ति है, ना कोई घी है हमारे पास कि यज्ञ कर सकें हम लोग, कोई मंत्र बोल सकें, कोई शास्त्र पढ़ सकें, कोई मंदिर में सुबह उठ के चले जाएं, हाँ कोई बोलेंगे सुबह उठ के ठंडे पानी स्नान करो, मंदिर मंगल आरती में जाओ, नॉट पॉसिबल। ऐसे पतित अवस्था में ना ध्यान कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना मंदिर की पूजा कर सकते हैं, और आलस्य इतना है, ना कुछ बुद्धि है, ना कुछ याद रहता है। और एक बात, कलयुग में लोगों को याद ही रहता नहीं कुछ, कुछ सुना अभी मैंने प्रवचन किया और बोला क्या क्या बोला था तो किसी को याद नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है, खाना इतना दूषित हो गया है। खाने में क्या मिलता है आजकल, पाव वड़ा पाव मिलता है सब जगह पे, लोग अधिकतर लोग वड़ा पाव खा के जीते हैं, उसमें कुछ पोषण ही नहीं है। सब्जी फल धान्य सब खाद डाल के बनाया गया है, उसमें कुछ शक्ति नहीं है, सब मिलावट में मिलता है। आप जो खाते हो आपको लगता है कितना बढ़िया माल खा रहे हैं, लेकिन उसमें सब नकली माल मिलता है। फलों को वैक्स लगाते हैं, मोमबत्ती का मोम होता है ना वो लगाते हैं चमकाने के लिए उसको, बस उसको चाकू से खिसेंगे ना उसको तो मोम निकलेगा उसमें से आपको बहलाने के लिए। अब पेपर में परसों आया था कि केले होते ना केले, उसको कुछ दवा डाल के गर्म करते हैं, मतलब पकाते हैं, तो कैसे पहचानना होता है जो नकली तरीके से पकाया गया है और जो असली तरीके से पका गया है, उसको कैसे पहचाने, उसका एक पूरा एक मैसेज आया था। अच्छा लगना चाहिए तो दूधी के, दूधी होता है दूधी, लौकी बोलते ना आप उसको, दूधी जब आता है ना तो उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, लगाते ही एक रात में इतना बड़ा होता है वो दूधी। हाँ ये सब हमने आंखों से देखा है, हमने सब नकली, उसके अंदर कोई शक्ति है ही नहीं, खाली इतना बड़ा बस, क्योंकि आपको कल बेचता है ना उसको, आज थोड़ा सा दूधी आया है हमारे खेत में आपके, वे परसों चार दिन तक कौन वेट करेगा उसको, आज सुई लगा दिया कल इतना बड़ा मार्केट में बेचेंगे उसको, कोई स्वाद नहीं, कोई खुशबू नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर, हर चीज ऐसी है। गटर के पास बाजू में जब पाले भाजी बनती है उसके अंदर क्या शक्ति मिलेगी आपको, ऐसा जीवन हो गया हमारा, सब कुछ नकली। ना खाने में शक्ति है तो बुद्धि में कैसे याद रहेगी हमको, शरीर में शक्ति कैसे रहेगी, इतने सारे बुखार आ गए हैं, इतने सारी बीमारी आ गई है, नए नए रोग हो रहे हैं ना, कि चिकनगुनिया आ गया बीच में एक बार, फिर डेंगू आ गया, फिर क्या क्या आ गया, हमारी किताब में नहीं था, हम जब पढ़ते थे किताब में मेडिकल में तो ये सब रोग नहीं थे उस समय, नए नए रोग सब पैदा हो रहे हैं, एड्स आ गया उसके बाद में हमारी पढ़ाई के बाद में, तो इतना जीवन हमारा कमजोर हो गया है। तो इस स्थिति में ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ प्रवचन में, क्या जरूरत है बताने की, दुनिया में क्या चल रहा है। ये स्थिति में अगर लोगों का उद्धार करना है, इस स्थिति में अगर भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम और कृपा आपको चाहिए, तो भगवान ने सोचा कि ये लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना तपस्या कर सकते हैं, ना दान पुण्य कर सकते, इतने कंजूस हो गए दान क्या करेंगे, पैसा ही नहीं है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, वो भी दोनों को काम करना पड़ता है, पति और पत्नी दोनों, बच्चे कई क्रेश में, पत्नी काम पे पति भी काम पे, क्योंकि उतना भी नहीं पुरता है, 50-50 साल तक तो लोन ही चलता है घर का, इतने से कमरे का, तो वो दान किधर करेगा, तपस्या करने को समय किधर है उसके पास, उसकी नींद ही पूरी नहीं होती है, 2 घंटा ट्रेन में आने जाने में 4 घंटे हो गए और 12 घंटा काम करता है तो कभी काम करेगा वो, और क्या करेगा वो, आप बोलेंगे जब करो जब कैसे करेगा वो, इतना जीवन संघर्षमय हो गया है, इतना धक्काधकी का जीवन हो गया है, इतना कष्ट है जीवन के अंदर, फिर तूफान आता है, भाई देखो फरवरी के अंदर बारिश आ गई, अभी फसल तैयार थी उसको काटने वाले थे, है ना, अपने गांव में गेहूं काटने वाले थे यूपी के अंदर, अभी चावल काटने वाले थे, अभी सरसों काटने वाले थे, तो उसके अंदर बारिश हो गई, सारी फसल नष्ट हो गई, सारा मेहनत बेकार हो गया, इस साल में क्या खाएंगे पता नहीं है, फिर जब भी बारिश नहीं चाहिए तब बारिश हो रही है, जब बारिश गिरनी चाहिए तब अकाल पड़ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, आप लोग सोचते हो क्या ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे बचपन में ऐसा नहीं होता था, अभी 30 साल के अंदर इतना फर्क क्यों पड़ा, क्योंकि लोगों को इतने पाप करते हैं, प्रकृति के नियम इतना तोड़ देते हैं लोग, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, निष्प्राप्त प्राणियों को मार के उनका मांस खाते हैं, उनको दर्द देकर अपना पेट भरते हैं, इतना सारा पाप जब अत्याचार पृथ्वी पर होता है तो पृथ्वी भी जवाब देगी कि नहीं देगी, प्रकृति भी जवाब देगी ना कि नहीं देगी, जब लोग अच्छा काम करते हैं, पुण्य काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, एक धार्मिक जीवन जीते हैं, तो फिर प्रकृति की तरफ से समय पर वर्षा होती है, समय पर फसल आती है, अलग समय पर वर्षा नहीं होती है। राजा परीक्षित के समय ऐसा वर्णन आया है भागवत में राजा परीक्षित इतना राजऋषि था, इतना वो संत था राजा होने पर भी, अभिमन्यु का पुत्र था वो, अर्जुन का पुत्र था, पोता था, वो इतना संत था कि उसके राज्य में कभी भी दिन में वर्षा होती नहीं थी। जब लोग सोते थे तब पर्याप्त मात्रा में जितनी चाहिए उतनी वर्षा होती थी, और दिन में कभी वर्षा नहीं होती थी, और जो सीजन में जो फल और फूल आना था वो भरपूर मात्रा में आता था। सब जगह हौद, तालाब, नदियां स्वच्छ जल से भरे हुए रहते थे, और कभी किसी को दो चार घंटे के ऊपर पेट भरने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता था। और भारत में तो ऐसी स्थिति थी कि केवल 4 महीने मेहनत करना है खेती करने के लिए बस, और 8 महीने क्या करना है बताइए। 4 महीने अगर काम हो गया, धान्य महीने आ गया साल भर का, तो 8 महीने करना क्या है? केवल भजन करना है भगवान का, केवल सत्संग करना है। ये हमारे देश की स्थिति थी। इतना भाग्य है हमारा क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है ना, खेती करने वाला देश है हमारा। वर्षा बहुत होती है, बहुत खेती करते लोग यहाँ पर, अधिकतर लोग 80% लोग गाँव में रहते हैं और खेती करते हैं। तो समय पर वर्षा होने से लोगों का भजन इतना बढ़िया होता था, इसलिए समय पर वर्षा होती थी, ज़्यादा नहीं होती, कभी तूफान आंधी नहीं आता था, कभी बाढ़ नहीं आती थी। ये सब प्रकृति का क्या कहते हैं उसको, रोष है हमारे ऊपर। हम लोग गलत काम करते हैं, प्रकृति भी उसका जवाब देती है कि गलत टाइम पे वर्षा हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बर्फ गिर रहा है, जब नहीं गिरना चाहिए तभी गिर रहा है, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। प्रकृति का कर्तव्य है देने का, प्रकृति को पानी देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रही क्योंकि इतने पाप बढ़ रहे हैं, इतना पाप का बोझ बढ़ रहा है, तो प्रकृति भी जवाब दे रही है। इसके जवाब में आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको फसल नहीं मिलेगी, आपको खाने को नहीं मिलेगा, आप भूखे रहोगे, नंगे रहोगे, परेशान रहोगे, ये हमारे कर्मों का फल है। तो सब मिलकर हम लोग प्रकृति को कष्ट दे रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, ये लोगों की पतित अवस्था देखकर महाप्रभु चैतन्य ने सोचा कि मैं आऊंगा और इनको सबसे आसान तरीका दूंगा मेरे पास पहुंचने का, और वो है भगवान का नाम लेना। मतलब कैसे कि इसके लिए तपस्या की जरूरत नहीं है, कि आपको घर छोड़ के जाना है भाई, पति पत्नी को छोड़ के जंगल जाना है, सन्यासी बनना है, उसकी भी जरूरत नहीं है। धन दौलत छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थ बने रहो, अपना नौकरी करो, अपना जो भी पैसा आता है उसको संभालो, परिवार को रखो अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रहकर भी कर सकते हो। समय मिलेगा तो तीर्थ यात्रा करने जाओ, मायापुर चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, नासिक चले जाओ, भगवान का दर्शन करो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। आप बताइए मुझे, बिना पढ़ा लिखा आदमी जब कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? बालक कर सकते हैं, बालक बालक भी कर सकता है। 2 साल का बालक बोल सकता है हरे कृष्णा? बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। मतलब बालक भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है और अनपढ़ भी कर सकता है। बहुत धनवान है वो भी कर सकता है, और बिल्कुल धन नहीं है वो भी कर सकता है। वो नहीं करेगा अपनी इच्छा से, मेरे को नहीं करना है ऐसा बोलेगा, लेकिन नहीं कर सकता क्या वो? नहीं कर सकता है जरूर। ऐसा बनाने भगवान ने बना के रखा है कि किसी भी स्थिति में आप रहोगे, और दिखने में अच्छे नहीं एकदम, बहुत कुरूप दिखते हो, नाम जप कर सकते हो? कर सकते हो। और बहुत फिल्म की हीरोइन है, को सुंदर एकदम, मिस यूनिवर्स, वो कर सकती क्या? वो भी कर सकती है। वो नहीं करेगी उसकी इच्छा से, लेकिन कर सकती है ना वो। अपने अपने धर्म में, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जो भी धर्म में है, ये सारी अवस्था में आप गाँव के हैं वो भी कर सकते हैं, शहर के भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं और नौकरी वाले भी कर सकते हैं। अरे हमारा तो हॉस्पिटल है ना, बीमार आदमी जब कर सकता है क्या? यस और नो? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? बीमार आदमी भगवान का नाम ले सकता है, और जो स्वस्थ है, इसका आरोग्य अच्छा है, वो भी भगवान का नाम कर सकता है, ले सकता है। ये सब क्यों बताया? क्योंकि भगवान ने ऐसा पद्धति बनाया कि जो सब लोग कर सकते हैं, कोई भी ना ही करना ऐसा मुमकिन नामुमकिन नहीं होना चाहिए। चलो हिंदू कर सकता है, हाँ कर सकता है, मुसलमान कर सकता है, क्रिश्चियन कर सकता है, बुद्धिस्ट कर सकता है, और कोई धर्म का जीव आदमी कर सकता है, सब धर्म का आदमी भगवान का नाम ले सकता है। अपने अपने भगवान को जो उस नाम से पुकारता है, वो नाम तो जरूर पुकार सकता है वो। तो भगवान ने ये पद्धति बनाया, ये पद्धति को देने के लिए स्वयं आए वो कलयुग में, और आसान कर दिया। वो कहते हैं कि पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान, जो जाए देखिला कोरिला प्रेमदान। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने देखा नहीं कि कौन व्यक्ति योग्य है कि नहीं योग्य है। पात्र मतलब क्या, ये पात्र है कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं देखा। और जिस जगह नाम दे रहे हैं भगवान का, वो जगह अच्छी है गंदी है, गटर के पास में है कि बिल्डिंग में है कि मंदिर में है, वो भी देखा नहीं। ना देखिला स्थाने अस्थान, मतलब स्थान कौन सा अच्छा है कि बुरा है, वो भी नहीं देखा उन्होंने। जिधर भी लोग नाम लेने को तैयार है उधर भगवान का नाम उन्होंने बांटा सब लोगों को, और आगे पीछे देखा नहीं, सबको भगवान का प्रेम दे दिया उन्होंने। इसका प्रूफ क्या है? जगाई और मधाई। जो पहले जमाने में रावण कुंभकर्ण बंद कराए थे, उसके पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बंद कराए थे, उसके बाद में कृष्ण के अवतार में दंतवक्र और शिशुपाल बंद कराए थे, वो दो थे, दो हर बार दो दो के रूप में आते थे, हर अवतार में भगवान ने उनका वध किया है। तो चैतन्य महाप्रभु के भी आए, अंदर आए, वो जगाई मधाई बंद कराए, और इतना भयंकर पाप करते थे वो, उनको भी उन्होंने तार दिया केवल नाम के बल से। यमराज भी परेशान हो गए थे कि इन लोगों का पाप मैं अभी कहां रिकॉर्ड रखूं, उसका कहां रिकॉर्ड रखूं और कहां रिकॉर्ड रख के उसका दंड दे दूं उनको। रिकॉर्ड रखना तो एक बात है, लेकिन रिकॉर्ड रखने के बाद दंड भी देना पड़ता है ना, कि ये गुने के लिए ये दंड, ये पाप के लिए ये दंड, ये सब कौन करेगा, इतना सारा काम एक दो व्यक्ति के आदमी के लिए, अरे दुनिया में कितने लोग हैं, सबका हिसाब रखना पड़ता है मुझे। तो यमराज भी परेशान हो गए थे, यमराज जैसे व्यक्ति जो इस काम में बहुत निपुण है। तो यमराज को जब पता चला कि जगाए मधाई को चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम देकर उनका उद्धार कर दिया, तो यमराज को विश्वास नहीं हुआ, यमराज बेहोश हो गए। अबे आप मालूम है यमराज कौन व्यक्ति है? यमराज हर रोज गुनेगारों को मिलते हैं। पुलिस लोग किसको मिलते हैं? अच्छे आदमी को मिलते हैं क्या? पुलिस लोगों का दिन भर पाला किसे पड़ता है? गुनेगारों से। जो दिन रात गुनाह करते हैं उनको पुलिस का दर्शन होता है। आपने आपके घर में बेल बजी, दरवाजा खोला और एक पुलिस ऑफिसर आपके सामने खड़ा है, तो आपको आश्चर्य होगा ना, अरे तू मेरे घर पे क्यों आए? आपके घर में पोस्टमैन आएगा, आपके घर में दूध वाला आएगा, आपके घर में मेहमान आएगा, आपके घर में कोई और कोई आदमी आएगा, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए आएगा, लेकिन आपने बेल बजा और खोला और हवालदार देखेगा आपको, तो आपको टेंशन आएगा ना घर पे, अरे मेरे घर पे क्यों आया तू भाई, और तुम्हारा लड़का किधर है, उसके नाम पे वारंट है मेरे हाथ में। अगर आपके घर में गुनेगार है, आपको पता नहीं है लेकिन है, तो पुलिस आपके पास आएगा। मतलब क्या होता है, पुलिस लोगों को गुनेगारों से मिलने से डर लगता नहीं है, वो तो उनका काम ही है, वो तो पकड़ते उनको, दंड देते उनको। यमराज है ना, ये सब पुलिसों के पिताजी हैं, और दुनिया भर में जितने लोग पाप करते हैं उनको दंड देने वाले यमराज हैं, और ये उनको देख कर सोच कर भी लोग डरते हैं, उनका नाम सुनकर भी। उनके दूत जो है, वो जो लेने को आते हैं, वो देख कर लोग, पेशेंट लोग होते हैं ना मरने के पहले, आपको पता है कितने लोगों ने देखा है, नर्स लोग और कितने लोगों ने देखा है, मरने के पहले टट्टी और पेशाब कर देते हैं, जस्ट मरने के पहले, आपने देखा होगा ना, क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो मरने के समय उनको यमदूत का दर्शन होता है जो उनको लेने आते हैं, तो डर के मारे उधर ही पहले पेशाब करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर उनको यमदूत खींच कर लेके जाते हैं अपने लोक में दंड देने के लिए, उसका हिसाब किताब करने के लिए, इतने भयंकर होते हैं वो। और कितना भी आदमी खूंखार होगा, कितना भी बड़ा नामचित गुंडा होगा, कितना भी ना डरने वाला होगा, कितना भी बहुत हिम्मत वाला होगा, यमदूत को देख कर वो डर जाता है, ऐसा उनका दर्शन होता है भयंकर। वो यमदूतों के मालिक स्वामी यमराज, जब इनको पता चला कि जगाई मधाई का उद्धार हो गया, वो भक्त बन गए, पाप करना छोड़ दिया, अभी हरिनाम करके नाच रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो यमदूतों के स्वामी यमराज को विश्वास नहीं हुआ, और ये बात सुनकर उनको यकीन भी नहीं हुआ, तो बेहोश हो गए वो। तो बोले मुझे यकीन नहीं है, ये इतना सारा रिकॉर्ड बना के रखा है मैंने, वो नष्ट करने के पहले मुझे एक बार खुद जाके देख के आना है कि सच है कि गलत है। तो निकले अपने रेडे पर बैठकर, होता ना रेड़ा मतलब क्या, भैंसा, भैंसा उसका वाहन है यमराज का, वो लेकर निकले वो पृथ्वी पर देखने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो क्या देखा कि ब्रह्मदेव भी जा रहे हैं अपने हंस पे बैठकर, अरे गणपति भी जा रहे हैं चूहे पर बैठकर, अरे कार्तिकेय भी जा रहे हैं मोर पे बैठकर, और अपना इंद्र भी जा रहे हैं, सब लोग देवता लोग जा रहे हैं पृथ्वी पर, कहाँ जा रहे हैं? अरे देखने के लिए, जगाए मजाए जैसे लोग भी भगवान का नाम लेके उद्धार हो गया उनका, अरे कैसे हो गया, मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ। सारे देवता लोग देवता लोगों से अपने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी पर आ रहे हैं देखने के लिए। तो ये अपने भैंसे को इतना जोर से भगा रहे कि भैंसा बेहोश हो गया, वो इतना स्पीड से जा नहीं पाया। तो फिर क्या किया, ब्रह्मदेव ने यमराज को लिफ्ट दिया, उन्होंने कहा जल्दी जाना है, तो भैंसे को छोड़ दिया उधर ही और यमराज के हंस पर चढ़ गए। तो पूछने लगे यमराज चढ़ गए ब्रह्मा जी के हंस पर, और जब बैठ गए तो ब्रह्मा जी को पूछने लगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, इतने बड़े पापी, मेरा सारा स्टाफ जो है उनका रिकॉर्ड रखते रखते दम दम निकल गया था उनका, जितने मेरे यमदूत है सारे लगे हुए दो आदमी के पापों को हिसाब रखने में, इतना थक गए, बोलते अभी काम नहीं करना है हमको, और इतना सारा पापों का रिकॉर्ड कौन रखेगा, इतना पाप करते लोग, तो ये कैसे हुआ। तो ब्रह्मदेव वर्णन करने लगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर महाप्रभु आए, फिर उन्हें गले लगाया, ऐसा वैसे। तो ये सुनकर भी बेहोश हो गए वो, बोले इतनी कृपा कैसे हो सकती है। तो ये बेहोश अवस्था में पृथ्वी पर पहुंचे, तो ब्रह्मा ने फिर जल छिड़क कर उनको पृथ्वी पर पहुंचने के बाद में जगाया, यमराज जी उठो अभी आ गया पृथ्वी, देखो अभी सीन आपके सामने है। तो यमराज ने होश में आके अपनी आंखों से देखा कि जगाई मधाई दोनों पापी जो है महा महा महापापी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में नाच रहे हैं, उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी नाच रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भी नाच रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, और क्या देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु काले हो गए पूरे। अरे ऐसे कैसे हो गया, बोले उन्होंने जगाई मधाई को गले लगाया, और जगाई मधाई को गले लगाया और सारे पाप उनके अपने ऊपर लिए, उनको पाप से मुक्त कर दिया। तो गोरे रंग के गोल्डन रंग के चैतन्य महाप्रभु थे वो काले हो गए, उन्होंने बताया अभी कीर्तन करो, जब कीर्तन करेंगे तो ये जो मेरे अंदर पाप आए हैं जगाई मजाई के वो सब निकल जाएंगे। तो सब देख रहे हैं, देवता लोग आकाश से देख रहे हैं, मतलब नीचे से देख रहे हैं करीब से, और सारी जनता भी देख रही है कि महाप्रभु इतने सुंदर थे वो काले हो गए, अभी कीर्तन शुरू हो गया है तो जगाई मदाई दोनों नाच रहे हैं, बाकी सब भक्त लोग भी नाच रहे हैं, वो जोरदार कीर्तन हो रहा है। और वो कीर्तन जब आगे बढ़ता है तो धीरे 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 चैतन्य महाप्रभु का शरीर जो है दोबारा सोने के जैसा बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, जगाई मदाई के पहले पाप जो है भगवान ने स्वीकार किए, और वो पाप भी नष्ट कैसे हो गए, भगवान का नाम लेकर। ऐसे कहते हैं कि भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप टिकता नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान के नाम से नष्ट नहीं होता है, इतना पाप आप कर नहीं सकते हैं जितना भगवान के नाम लेने से नष्ट होता है। हम बोलते ना क्या करेंगे, हम तो इतने पतित हैं, इतने पापी हैं, क्या हमको भगवान का नाम बचाएगा, हम तो इतने पतित हैं, ऐसे हम बोलते हैं, गलत बात है। तो जब यमराज ने अपनी आंखों से देखा कि जगाई मधाई इतने भयंकर पापी लोग जो दिन में ही कुछ रेप करते थे, दिन में कुछ घरों को जलाते थे, दिन में कुछ मर्डर करते थे, रोज का उनका कोटा था जो सारा गांव मिलकर भी नहीं कर सकता है, उतना दोनों अकेले करते थे एक दिन के अंदर, इसलिए उनका रिकॉर्ड रखते रखते यमदूतों का नाक में दम आ गया था, इतने भयंकर पापी थे, हम लोग तो विचार भी नहीं कर सकते इतने वो पापी थे। तो ऐसे पापियों को भी दीनहीन याता चिलो हरिनाम उद्धारी लो तारा साक्षी जगाई मधाई, इतने दीन इतने हीन इतने पतित जो थे उनको भी हरिनाम उद्धारी लो, हरिनाम से द्वारा उद्धार दिया उनको। इसका प्रूफ क्या है, तारा साक्षी जगाई मदाई, ये दोनों इसके प्रूफ हैं। इनकी कहानी सुनोगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम भी पापी हैं, हमने भी बहुत सारे पाप किए, लेकिन हम भी अगर भगवान के नाम का सहारा लेते हैं तो हम बच सकते हैं। यही स्टोरी का मैसेज है हमारे लिए। तो इसमें से क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने नित्यानंद प्रभु को दारू के मटके से मारा था, और वो मार खाते ही नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार है वो बेहोश होकर गिर गए, फिर और मारने जा रहे थे उसको, दूसरे ने उसको रोका, अरे मत मार मत मार। तो जिसने मारा उसको भगवान ने पहला कृपा नहीं दिया, दूसरे रोका सेकेंड टाइम मारने के लिए उसको पहले आलिंगन दिया, तुमने दूसरी बार मारते हुए उसको रोका ना, आ जा तो पहले आ जा, तो मेरे भक्त को मारने के लिए तुमने रोका, चलो उसको गले लगाया, उसका पाप पूरा ले लिया। वो देखकर जिसने पहले मारा था वो भी चरणों में गिर गया, अरे प्रभु मुझे भी बचाओ, मैं भी बहुत पापी हूँ, माफ करना मुझे माफ करना, फिर उसको गले लगाया। तो जिसने पहले मारा था वो संत बन गया, बाद में भक्त बन गया भगवान का। उसने और दोनों ने मिलकर इतना लोगों का अपराध किया था, इतना लोगों का अपराध किया था कि जब वो संत बने तो लोग भूले नहीं उनको कि मेरे को ऐसा किया था, उसको ऐसा किया था, मेरे वाइफ को ऐसा किया था, मेरे घर को जला दिया था, उनको तो याद था ना वो सब कुछ, ये लोग लेकिन तब तो डरते थे उनसे, वो गुंडा थे तभी, लेकिन जब संत बन गए तो उन्होंने गुंडागर्दी बंद कर दिया, भजन करना शुरू किया, तो लोगों ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया उनके ऊपर, उनको पत्थर मारते थे लोग, उनके ऊपर गाली देते थे। तो मधाई उसका नाम था, मधाई जिसने पहले मारा था, तो मधाई महाप्रभु चैतन्य को मिले बाद में, बोले कि मैंने इतना पाप किया है कि लोग मेरे पर बहुत गुस्सा है, मुझे पत्थर मारते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको नदी किनारे रहकर वो जितने पत्थर मारते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपका पुराना पाप है सब कुछ, और जितने लोग नदी में स्नान करने को आते हैं उनके कपड़े संभाल कर रखना, उनको कपड़े धो के देना, घड़ी करके देना, उनकी सेवा करना आपका काम है, क्योंकि ये सब गांव के लोगों का आपने अपराध किया है, सब गांव के लोग नदी में स्नान करने को आते हैं, आप लोग यही रहना और उनकी सेवा करना। तो पूरा जन्म उसके बाद में मरने तक वो मधाई ने सब गांव के लोगों का सेवा किया है। और वो क्या करते थे मालूम है, अगर आप आए उनको पुराना अपराध याद करके पत्थर से मारा तो पत्थर उठा के बोलते थे ये लो दोबारा मारो, क्योंकि एक बार पत्थर मारने का अपराध नहीं किया मैंने कई बार पत्थर मारने का अपराध करके छोड़ा है आपको, आपके घर के हर एक व्यक्ति को मैंने त्रस्त किया है, हर एक आदमी को परेशान किया है, सब लोगों को लूटा है, सब लोगों का अपराध किया है, रेप किया है, क्या नहीं किया है, तो आप लोग कितनी बार पत्थर मारोगे तभी मेरा अपराध पूरा नहीं होगा, मारो और मारो, ऐसा करके भजन किया उन्होंने। तो मधाई फिर बाद में क्या बने, जगदानंद, जगाई का नाम हुआ जगदानंद स्वामी, और मधाई का नाम क्या हो गया, माधवानंद स्वामी, दोनों सन्यासी बन गए, दोनों परम संत बन गए। और आज उधर माधवानंद गोस्वामी और जगदानंद गोस्वामी की समाधि भी है उधर मायापुर के अंदर। इतना परिवर्तन सोचो आप, इतने भयंकर गुंडा, यमराज भी परेशान थे उनके लिए, और बाद में क्या बने, महान संत बने। इतना परिवर्तन केवल भगवान के नाम से ही हो सकता है। अगर आपको पता चला दाऊद इब्राहिम, हाँ एकदम भक्त बन गया भगवान का, तो आपको आश्चर्य होगा कि नहीं होगा, अरे इतने बॉम्बस्फोट किए, इतना क्या क्या किया उसने, कोई और कोई पश्चिम जगत का कोई आतंकवादी होगा, आपको मन पड़ा तुरंत भक्त बन गया, तो आपको आश्चर्य होगा ना उसे, वैसे ही इनका था, एकदम नामचीन गुंडा थे ये लोग, लेकिन महाप्रभु जी का संपर्क हुआ, हरि नाम का संपर्क हुआ तो भक्त बन गए। ऐसे कहते हैं कि छोटे छोटे रूप में ये जगाई मधाई हमारे अंदर भी है, छुपे हुए हैं अंदर, हृदय के अंदर, और भक्त होने पर भी, हम तो भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं, अभी तो भक्त बने नहीं है, ट्राई कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है भक्त बनने का, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब करते समय भी मन में हमारे कितने विचार आते, गलत गलत विचार आते, इसका बुरा करो, उसको करो, किसी लड़की की याद आती है, किसी को धन की याद आती है, क्या क्या मन भटकता है किधर किधर। तो छोटे छोटे स्वरूप में ये दो महान पापी हमारे हृदय के अंदर छुपे हुए हैं, और उनको नष्ट करना है हमारे हृदय से तो हरिनाम जप ही करना पड़ेगा आपको। जिनको एक्चुअली किसने तारा, हरिनाम संकीर्तन ने, वो हरिनाम संकीर्तन आप भी करेंगे तो आपके हृदय में जो जगाई मदाई छुपे हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और जब वो जगाई मदाई गुंडागर्दी बंद कर दिया तो क्या बने, वो संत बने, तो आप लोग भी संत बन सकते हो, केवल हरिनाम स्वीकार करना है आपको। अगर आपको बहुत अति सुंदर परिवर्तन चाहिए आपके जीवन में, आमूलाग्र बोलते हैं इसको, आमूलाग्र मतलब क्या, नख से लेकर पांव तक अगर आपको बदलना है पूरा लाइफ में, तो आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए, तो आपका भाग्य बदलेगा, आपकी किस्मत बदलेगी, आपका स्वभाव बदलेगा, आपका जीवन का हर चीज बदल जाएगा, आपके विचार बदलेंगे, आपके आचार बदलेंगे, आपका चरित्र बदलेगा, क्या चाहिए आपको लाइफ में, सब कुछ बदल जाएगा। हमको अभी भी याद है हमारा जब जन्म हुआ था तो बचपन में हम लोग किधर रहते थे और क्या विचार करते थे और कैसे जीवन जीते थे, और आज हमारा जीवन में कितना बदल हो गया है। हमारे घर के पास में एक दिन छोड़कर एक दिन हमेशा सोडा वाटर और ट्यूबलाइट की फाइट होती थी, दो गैंग के अंदर मुठभेड़ हुआ करती थी, 7 बजे के बाद में रोड पे को उतरता नहीं था कोई, धड़ाधड़ लाइट बंद होती थी स्ट्रीट पर, और कुछ देर के बाद में फिर वो किसी का मर्डर हो रहा है, कोई ट्यूबलाइट फोड़ रहा है, कोई बॉटल फोड़ रहा है, कोई तलवार लेके भाग रहा है। ये हमारी बचपन था, हमारा जन्म हुआ था, वो एरिया का नाम है शैतान चौकी, नाम ही ऐसा भयंकर है। उसमें इतने हमने गुंडा के फाइट देखे हुए हैं, बचपन हमारा वो देखते देखते गुजर गया पूरा। अभी आज हमारी जिंदगी क्या है, हम लोग भक्तों के बीच में बैठते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का। हमारे पिताजी के दुकान में गुंडे आते थे धमकी देने के लिए, कभी सामान लूटने के लिए। हमारे पिताजी ने कितना साहस से काम लिया है। तो ये बचपन हमारा था, और आज हमारा जीवन क्या है, हम लोग केवल संतों को मिलते हैं। राधानाथ महाराज ने हमको दीक्षा दिया है। आज का वो दिन है 17 मार्च 1995, इस दिन में 20 साल हो गया आज उसको। आज के दिन में हमें राधानाथ महाराज ने दीक्षा दिया था, शिष्य बनवा लिया था, आज उसको आज 20 साल पूरे हो गए। आज एकादशी का दिन है, उस दिन होली थी उस साल। उसके दीक्षा होने की, उनके दीक्षा मिलने की वजह से कितने अच्छे अच्छे लोगों का हमारा संपर्क हुआ, अच्छा अच्छा कार्य जीवन में होने लगा। ये हॉस्पिटल बनाया गया, गांव गांव में कैंप लगने लगे, कीर्तन होने लगा, भगवान का प्रवचन कीर्तन, भगवान का सेवा, इतनी अच्छी अच्छी चीजें जीवन में आ गई। अगर भगवान का नाम का संपर्क नहीं होता तो ये सब बदल हमारे जीवन में नहीं होता। और इतना ही नहीं कि हमारा जीवन बदल गया, हमारे संपर्क में जो आए उनका भी जीवन बदल गया। जितने भी फ्रेंड्स थे हमारे वो भी इसमें आ गए बाद में धीरे धीरे। एक आदमी बदलने से कितने लोग बदल सकते हैं। ये सब चमत्कार किस लिए है? भगवान के नाम के लिए, क्योंकि भगवान का नाम लेते ही सारे पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं हमारे, दोबारा नहीं करना चाहिए, दोबारा करेंगे तो वापस आ जाते हैं। आप बोलेंगे अच्छा है, एक बार भगवान का नाम लो, फिर कल जाके दारू पियो, फिर परसों सुबह वापस जप करो। अगर आप सोचेंगे ऐसा तो ऐसा नहीं होता है। वो एक बार करेंगे तो पिछला पूरा हिसाब रिकॉर्ड नष्ट हो जाएगा, लेकिन नया रिकॉर्ड आपको बनाने का नहीं है। नया रिकॉर्ड आपने चालू किया तो पुराना रिकॉर्ड भी जोड़ दिया जाएगा उसको। माफी कब होती है? एक बार होती है, 2-3 बार माफी नहीं होती। अपने बच्चे के घर में आपको कोई पेंसिल चोरी करके आया, पहली बार माफ कर दिया, सेकंड टाइम माफ करेंगे उसको? तीसरी बार माफ करेंगे? नहीं करेंगे, दंड देंगे उसको आप। उसी तरह से एक बार भगवान का नाम जप करने से हमने जाने अनजाने में गलती से जो पाप किए वो सब नष्ट हो जाते हैं। खाली वादा भगवान को एक ही चाहिए, जगाई मदा से उन्होंने एक ही वादा लिया उनसे, उनको गले लगाने के पहले, दोबारा पाप नहीं करोगे ये वादा करो। दोनों चरणों में गिर गए और दोनों ने वादा किया कि इसके आगे दोबारा पाप नहीं करेंगे। उन्होंने किया भी नहीं, इसलिए वो एक क्षण में उनका सारे पाप नष्ट हो गए और वो संत बने, गोस्वामी हो गए, माधवानंद गोस्वामी, जगदानंद गोस्वामी बन गए वो, गुंडे से नंबर वन के। तो हमारे जीवन में भी अगर हम हृदय से भगवान का नाम लेंगे तो हमारा जीवन भी पाप शून्य हो जाएगा। नंबर पहले, नंबर वन पाप शून्य हो जाएगा, और नंबर टू हम भी संत बन सकते हैं। आप सब लोग संत बन सकते हैं, केवल आप भगवान का नाम लो, बस श्रद्धा से लो, दिल लगा के लो। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, झोपड़ी में रहते हो, महल में रहते हो, औरत हो या आदमी हो, बच्चा हो कि बुढ़ा आदमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल समझना है कि ये जीवन भगवान का नाम लेने के लिए दिया है, और भगवान का नाम लेने से आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। इसी जीवन में आप बच सकते हो, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और कोई पेड़ का प्रदक्षिणा नहीं करना पड़ेगा, कोई देवी देवता को मिलना नहीं पड़ेगा आपको। एक भगवान का नाम लेने से आपका जीवन और मृत्यु के संघर्ष से आप बच सकते हो, और दोबारा इस दुख भरी दुनिया में जन्म लेने के लिए आप नहीं आओगे। इसी जीवन में सब हिसाब किताब समाप्त हो जाएगा और यमराज के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे आप, कोई दंड नहीं होगा आपको। और जीवन के अंत में भगवान का नाम लेने की वजह से आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे, आपको लेने के लिए विष्णु के दूत आएंगे, यानी कि भगवान के दूत आएंगे, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, वो आएंगे और आपको विमान में बिठाकर भगवान के धाम में लेके जाएंगे। यमदूत आएंगे तो आपको घसीट के लेके जाएंगे, तड़पा तड़पा कर लेके जाएंगे दंड देने के लिए। और अगर आप भक्त बने तो विष्णु के दूत आएंगे, विमान लेकर आएंगे, आपको सुंदर शरीर प्राप्त होगा भगवान के धाम वाला, और उसको बिठाकर एक आदमी को 4 ड्राइवर मिलेंगे, 4 दूत आएंगे एक रथ के लिए, एक आदमी के लिए खाली, ऐसे अनंत रथ आएंगे, जितने भी आदमी होंगे उतने रथ मिलेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान के धाम में। एक आदमी के लिए एक विष्णु का रथ आएगा और चार दूत आएंगे, तो प्रेम से आपको स्वागत करेंगे और ले जाएंगे स्वामी की तरह, भगवान के धाम में पहुंचाएंगे आपको। कैसे? आज भगवान का नाम लेंगे श्रद्धा से, तो इतना आसान और कौन कर सकता है? और कौन से विष्णु का अवतार आया है आज तक तो इतना इससे आसान कर सकता है? परम करुणा पाहुन दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांड। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ है भगवान का जो इतना करुणा, इतनी कृपा, इतनी माफी देता है, इतना आसान कर देता है। ऐसा कोई भगवान का अवतार आज तक नहीं हुआ है। इसलिए देखो देखो भाई, चैतन्य निताई, इनका भजन करो अभी आप। इस जन्म में भगवान का नाम लो और अपने पापों को नष्ट करके भगवान के धाम को प्राप्त करो। ऐसे संत लोग कविता में लिखते हैं, देखो देखो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करे, श्रद्धा के साथ में उनका नाम लो। बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। ये हमारा भाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु के आने से कुछ ही दिन के बाद जन्म लिया हम लोग ने। चैतन्य महाप्रभु आके अभी 529 साल हो गए, ज्यादा साल नहीं हो गए, क्योंकि बहुत करोड़ों साल के बाद में उनका अवतार होता है, और केवल 500 साल पहले, हमारे जन्म के पहले उन्होंने अवतार लिया है। ये सब लीला किया है, हमको हरिनाम दिया है उन्होंने, उसको स्वीकार करो और अपने जीवन को धन्य करो। सब लोग बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है, जो लोग व्रत करते हैं वो भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से भगवान के धाम में आदमी पहुंचता है, केवल एक व्रत करने से, महीने में दो बार, साल में 26 बार बस। और कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार कोई करने की जरूरत नहीं, कोई देवी देवता का उपवास करने की जरूरत नहीं। जो एकादशी करता है वो सभी व्रतों का उसको फल एक व्रत करने से मिल जाता है, सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, कृष्ण भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। राधा रानी को पूछा था गोपियों ने कि आप इतने भगवान को प्रसन्न कैसे करती हो, तो राधा रानी ने सभी गोपियों को बता दिया है, 26 एकादशी के व्रत का विस्तार में वर्णन करके बताया कि मैं ये व्रत करती हूं इसलिए कृष्ण मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो वो आज एकादशी का दिन है, पाप मोचनी एकादशी नाम है उसका, जो भी व्रत रखता है भगवान उसे प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। प्रकाश परदेशी, सब लोग प्रसाद।